नित्यानंद नमस्तोभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मश नाशाय जानवे पतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिशे नमः। हरे कृष्णा। तो आप सब भक्तों का स्वागत है और आज बहुत ही महत्वपूर्ण पानी हाटी दही चिड़वा उत्सव हरि बोल। परसों था निर्जला एकादशी महामहोत्सव। तो हम वैष्णव हम जो प्रयास कर रहे हैं शिला प्रभुपाद जी के इस आंदोलन में कितने सौभाग्यशाली हैं, रोज उत्सव है ना। और हम देखते हैं इस संसार में भौतिक जगत में व्यक्ति सुख की लालसा में इधर उधर भटकता है और उसके जीवन में कुछ गिने चुने उत्सव आते हैं, दिवाली होली इत्यादि। तो प्रयास करते हैं लोग उसको इंजॉय करने का, लेकिन उसका इंजॉयमेंट के लिए बहुत कष्ट उठाने पड़ते हैं और वास्तव कोई सुख मिलता नहीं। लेकिन यहाँ पे प्रतिदिन और एक एक दिन में तो कई उत्सव आ जाते हैं और कई बार भक्त लोग थक जाते हैं, बहुत उत्सव हो गए। लेकिन ये स्पिरिट देने के लिए है। अगर हमें भगवत धाम जाना है तो शास्त्रों में वैकुंठ जगत की का एक नाम है अखंड उत्सव, नॉन स्टॉप फेस्टिविटीज, नॉन स्टॉप, एक क्षण भी, हर क्षण कथा गायनम गमनम नाट्यम अपि वंशी प्रियदिनी है ना। वहां पे बोलना भी क्या है, गाने के समान है, चलना नाचने के समान है, हर क्षण वहां पे उत्सव ही उत्सव है। और प्रभुपाद जी के गुरु शिला भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर महाराज कहा करते थे कि मंदिरों में मठों में खूब उत्सव मनाने चाहिए। इन उत्सवों में क्या होता है, भक्त लोग इकट्ठे होते हैं, भक्तों का संग करते हैं, भगवान का भक्तों का गुणगान करते हैं, फिर बढ़िया फीस्ट पाते हैं या फिर फास्ट रखते हैं। और ऐसा करने से क्या होता है, हम भगवान के ओर निकट जाते हैं है ना। और भक्ति सिद्धांत सभी ठाकुर महाराज कहते हैं जितना उत्साह से हम उत्सव मनाएंगे उतनी हमारी सेवा की भावना और विकसित होती जाएगी है ना, सेवा की भावना विकसित होगी। और शिला भक्ति विनोद ठाकुर जी बताते हैं अगर कोई इन उत्सवों को बहुत उत्साह से मनाता है तो जब करते समय जो विक्षेप की बीमारी है, विक्षेप समझते हैं, मन इधर उधर भटकता है, भटकता किसी का मन जब करते हुए, तो उसका उपाय बता रहे हैं भक्ति विनोद ठाकुर जी कि इन उत्सवों को बड़े उत्साह से मनाइए। एकादशी का उत्सव, आविर्भाव तिरुभाव उत्सव, ऐसे उत्सव आते हैं, खूब उत्साह से इन उत्सवों को मनाना चाहिए। और उत्सवों का एक मुख्य अंग है श्रवण कीर्तन करना, सुनना। उसके विषय में सुनते हैं तो हम आज जो दही चिड़वा उत्सव के बारे में सुनेंगे तो हम जानेंगे नित्यानंद प्रभु की असीम कृपा, अक्रोध परमानंद नित्यानंद राय है ना, अब अपराध शून्य निताय नगरे बेड़ाए है ना। कितने कृपालु हैं नित्यानंद प्रभु और उनकी कृपा से रघुनाथ दास गोस्वामी जी को चैतन्य महाप्रभु के चरण प्राप्त होंगे। और हम देखेंगे रघुनाथ दास गोस्वामी कितने ललायित हैं महाप्रभु की शरण ग्रहण करने के लिए, कितना लौल्यम है उनमें और कितनी दृढ़ता है भक्ति करने की, ये देखेंगे। तो इनकी केवल चर्चा करने मात्र से हमारे अंदर भी महाप्रभु के चरणों की सेवा करने की दृढ़ता बढ़ेगी और हम भी जानेंगे कितना आवश्यक है नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करना और वो उस कृपा कैसे प्राप्त की जाए। तो संक्षेप में आप सब जानते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी हमारे षट गोस्वामियों में प्रमुख गोस्वामी हैं। रघुनाथ दास गोस्वामी जी का जन्म सप्तग्राम में हुआ। इनके पिता थे गोवर्धन मजुमदार, इनके चाचा थे हिरण्य मजुमदार। बहुत ही धनाढ्य परिवार से, बहुत ही धनाढ्य परिवार से जमींदार थे ये जमींदार। जो मुसलमान लोग थे या अंग्रेज लोग थे, इन्होंने भारत पे कैसे शासन किया, डिवाइड एंड रूल। इन्हीं भारतीयों में से कुछ को जमींदार बना देते थे और फिर इन्हीं जमींदारों से वो कर इकट्ठा करवाते थे और फिर ये जमींदार इनको पूरा का पूरा कर जमा कराते थे है ना। और जमींदार बनने की कोई योग्यता नहीं होती थी, किस जात का होना चाहिए, कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, बस जिसका लोकल इन्फ्लुएंस ज्यादा है उसको जमींदार बना देते थे। तो ये दोनों कायस्थ परिवार से थे है ना। कायस्थ परिवार आप जानते हैं, कायस्थ लोग आजकल जो वर्मा सक्सेना श्रीवास्तव जी ये सब कायस्थ होते हैं। और अभी भी हम देख रहे हैं ट्रेंड चलता आ रहा है, जितने भी सरकारी नौकरियां हैं आईएएस ऑफिसर्स या ज्यादातर कायस्थ कम्युनिटी से होते हैं। पीछे कुछ साल पहले सर्वे किया गया तो बोला 68% आईएएस ऑफिसर कायस्थ कम्युनिटी से। तो उस समय भी दोनों कायस्थ थे और खूब धन कमाते थे, 20 लाख सोने की मुद्राएं इकट्ठी करते थे एक साल में, और उसमें से जमा कराते थे, और अपने पास इनके कोई 12 लाख मुद्राएं रह जाती थी, इतना धन। और हुआ क्या कि ये दोनों जो भाई थे ब्राह्मणों की बहुत सेवा करते थे, नवद्वीप के ब्राह्मणों की, और इनके जो कुल गुरु थे यदुनंदन आचार्य थे, वो भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, तो उनके लिए अलग से बाड़ी बनाई हुई थी। यदुनंदन आचार्य वहीं रुकते थे, भगवान के विग्रह की सेवा करते थे, और यदुनंदन आचार्य भी चैतन्य महाप्रभु के भक्त थे, तो नवद्वीप से बड़े बड़े संतों को बुलाते थे। और ऐसे एक बड़े संत आए एक बारी, हरिदास ठाकुर जी यदुनंदन आचार्य के यहाँ रुके, और हिरण्य और गोवर्धन मजुमदार जाते से सुनते थे हरिदास ठाकुर जी से, कथा सुनते थे गौरांग महाप्रभु के विषय में। और हरिदास ठाकुर तो हमेशा नामाचार्य हैं, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, वो तो हमेशा हरि नाम लेते रहते थे। छोटे से बालक थे रघुनाथ दास, जाते थे हरिदास ठाकुर का उन्होंने संग किया, छोटे बालक ने उनके मुख से हरि नाम सुना, उनके दर्शन किए, उनका उच्चिष्ट स्वीकार किया, और थोड़ी बहुत उनकी सेवा की। इतना प्रभाव पड़ा उनके हृदय में, ऐसी छाप पड़ी, उन्हें बोला हाँ, ऐसा वैराग्य, हालांकि बचपन से वो विरक्ति थी, लेकिन हरिदास ठाकुर जी का संग प्राप्त करके, उनके मुख से शुद्ध हरिनाम सुन के, तो बिल्कुल गौरांग महाप्रभु का प्रेम उनके हृदय में उदय हो गया, और शुरू से बड़े ललायित हो गए, कब मैं गौरांग महाप्रभु की शरण में जाऊंगा। ये पूरी की पूरी दुनिया उनको कांटे के समान चुभती थी, बोले इंद्र के समान उनके पास ऐश्वर्य था, और उनको वो चुभता था, बिल्कुल सहन नहीं होता था। आप कोशिश कर सोचिए, हम लोग गर्मी के महीने में एसी ऑन करके आराम से बैठे हैं, हमें कोई कांटे के समान चुभेगा वो? बाहर निकलना कांटे के समान चुभेगा। लेकिन रघुनाथ दास गोस्वामी जी को वो जो सुख सुविधा थी कोई नहीं भा रही थी, और वो चाह रहे थे कब निकलूं यहां से, महाप्रभु की शरण ग्रहण करूं, और भाग जाते थे घर से, और उनके पिताजी के कई सिक्योरिटी गार्ड्स होते थे, पकड़ के लाते थे, बहुत कुछ होता रहा ऐसा। तो फिर उनकी माँ ने बोला अपने पति को, ये आपका बेटा पागल हो गया है, क्या करना चाहिए, अब इसको बांध दो। तो उनके पिताजी ने बोला, पगली, इसको कोई बांध सकता है ना, ये इतना भागता है, कौन इसको बांध सकता है। कहते आप समझे नहीं, इसको बांध दो, सुंदर स्त्री से विवाह करवा दो इसका। बोले ठीक है, ये भी ट्राई कर लेते हैं। तो अप्सरा समान लड़की को ढूंढा गया, अप्सरा जैसी सुंदर स्त्री से इनका विवाह हुआ, कोई फर्क नहीं पड़ा, बिल्कुल आकर्षित नहीं हुए, वही महाप्रभु को पाने की लालसा। और तो और अब इतना भागने लगे, तो अब उनके पिताजी ने कहा, जिसके हृदय में चैतन्य महाप्रभु के प्रति प्रेम उत्पन्न हो जाए, उसको संसार की कोई चीज बांध नहीं सकती। तो बीच में जब महाप्रभु वृंदावन जा रहे थे, तो शांतिपुर में रुके थे, तो जैसे कि बोलते हैं सभी घरों में कहानी है, बेटा जब आना शुरू करता है तो घर वाले यही बोलते हैं, तो घर में बैठ के जितनी मर्जी भक्ति कर ले, जो तेरे को देना होगा हम देंगे, तू बाहर मत जा, घर में बैठा रहे बस, है ना, वो भी यही कहते थे। तो रघुनाथ दास जी ने कहा चलो कुछ फायदा उठाते हैं, बोले ठीक है, अब मुझे शांतिपुर तो जाने दो, चैतन्य महाप्रभु वहां पे आए दर्शन कर रहे, हाँ ये कोई दिक्कत नहीं है, सिक्योरिटी गार्ड साथ में भेजे, आएगा वापिस आ जाएगा, हम वापिस आ जाऊंगा। सिक्योरिटी गार्ड्स के साथ गए, 10 दिन वहां पर रहे और महाप्रभु का संग किया, और जब इतना महाप्रभु का सौंदर्य देखा, महाप्रभु का सुंदर नृत्य देखा, तो वापिस आने की इच्छा ही नहीं, बोले महाप्रभु मैं तो वापिस नहीं जाऊंगा। महाप्रभु ने बोला मरकट वैराग्य मत दिखाओ, एक ही छलांग में समुद्र पार मत करो, अभी घर वापिस जाओ, और ऐसा व्यवहार करो जैसे कि बिल्कुल संसारिक व्यक्ति होता है, बिजनेसमैन है ना, एक गृहस्थ व्यक्ति, वैसा करो। समय आएगा जब मैं वृंदावन से लौट कर आऊंगा जगन्नाथपुरी, एक ऐसी युक्ति होगी कि तुम मेरी शरण आ जाओगे। बोले ठीक है। तो वापिस आए, जैसे महाप्रभु की आज्ञा थी, बिल्कुल घर वाले सोचे बच्चा नॉर्मल हो गया अब एकदम, है ना, जय श्री राधा राधिका रमन कृष्ण बलराम जगन्नाथ मंदिर, बिल्कुल सामान्य व्यक्ति की तरह व्यवहार करते थे, घर वाले बहुत खुश हो गए। लेकिन एक साल जब बीत गया, फिर रघुनाथ दास गोस्वामी से रहा नहीं गया, फिर वो भागना शुरू कर दिया, फिर पिताजी परेशान हो गए, सिक्योरिटी गार्ड्स रखे, बार बार पकड़ के लाते थे। तो बोले अब क्या करूं, बहुत समय हो गया, अब मुझसे सहा नहीं जा रहा, कब वो युक्ति होगी, कब वो समय आएगा। तभी उनको मालूम चला कि नित्यानंद प्रभु पानीहाटी में आए हुए हैं। पानीहाटी गए आप में से कितने लोग गए हैं पानीहाटी? पानीहाटी कलकत्ता के पास ही है, अगली बार जब मायापुर जाएं कलकत्ता स्टेशन पे उतर के पानीहाटी जा सकते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु इकट्ठे प्रचार करते थे नवद्वीप में, महाप्रभु ने संन्यास ले लिया, चले गए जगन्नाथपुरी। तो एक बारी जब नित्यानंद प्रभु जगन्नाथपुरी गए तो महाप्रभु उनको एक बारी बड़े एकांत स्थान पे ले गए और बोले देखिए मैं यहाँ पर आ गया हूँ संन्यास लेके, अब बंगाल में प्रचार कौन करेगा, तो तुम जगन्नाथपुरी मत आया करो, तुम बंगाल में जाओ और खूब प्रचार करो। और पूरी टीम दी उनको, उनके जितने पार्षद थे द्वादश गोपाल, पूरी टीम दी, कीर्तनियां दिए, गाने वाले दिए, बोले जाओ बंगाल में प्रचार करो। और फिर वो प्रचार करते करते आए पहले, सबसे पहले पानीहाटी में, और पानीहाटी में बहुत प्रसिद्ध भक्त रहते थे राघव पंडित। तो पानीहाटी में नित्यानंद प्रभु आए हुए हैं और रघुनाथ दास गोस्वामी जी को मालूम चला कि पानीहाटी में आए हुए हैं, बोले अब नित्यानंद प्रभु की शरण मुझे ग्रहण करनी है और इनकी कृपा से शायद मुझे चैतन्य महाप्रभु के शरण प्राप्त हो जाए। तो उन्होंने क्या किया फिर, अब उन्होंने अपने पिताजी से आज्ञा मांगी कि उन्होंने मन में कुछ विचार किया, अगले दिन वो नित्यानंद गोसाई के पास गए। तो पानीहाटी ग्राम में पहला प्रभु रा दर्शन, कीर्तनिया सेवक संगे और बहुजन। तो वहां देखा कि नित्यानंद प्रभु बैठे हैं, उनके दर्शन किए। कैसे दर्शन थे, गंगा तीरे वृक्ष मूले पिंडार ऊपरे, वसी आचन ये न कोटि सूर्योदय करे। गंगा के तट में एक वृक्ष के ऊपर एक चबूतरा था, वहां नित्यानंद प्रभु बैठे थे और ऐसा लग रहा था करोड़ों करोड़ों सूर्य उदय हो गए हूं, इतना प्रकाश है ना। तो ऐसा प्रभाव देखकर रघुनाथ बिल्कुल विस्मित हो गए और दूर से ही उन्होंने नित्यानंद प्रभु जी को प्रणाम कर दिया, है ना। ऐसा प्रभाव, इतना विस्मित हो गए। जब उन्होंने दंडवत प्रणाम किया तो नित्यानंद प्रभु के एक सेवक ने बोला ये रघुनाथ दास आपको नमस्कार कर रहा है। तो जब ये सुना रघुनाथ दास यहाँ पे आया है, वो उनको प्रणाम कर रहा है, सुन्नी प्रभु कहे चोर दिल्ली दर्शन, आए आए आजी तोर करीमु दंडन। चोर आ गया, अब चोर आ गया मेरे सामने है? आओ यहाँ पे आओ, अभी तुम्हें दंड देता हूं। कैसा लगा होगा रघुनाथ दास जी को, एक तो पहले बहुत घबराए हुए थे, दूसरे बड़े विस्मित थे नित्यानंद प्रभु के दर्शन करके, और उनका स्वीकार स्वागत कैसे किया जा रहा है, चोर है ना, आप किसी के यहाँ जाए आपको बोले सीधा चोर यहाँ पे आओ अभी तुम्हें दंड देता हूं। तो बड़े घबरा गए, तो क्या किया उन्होंने, प्रभु बोलाए ते हो निकट ना करे गमन। अब कौन जाएगा नित्यानंद प्रभु के पास, वो जा ही नहीं रहे, बोले यहाँ पे आओ चोर। तो गए नहीं वहां पे, घबरा रहे हैं। आकर्षि अतार माथे प्रभु धरीला चरण, वो नहीं आ रहे तो नित्यानंद प्रभु उठ के गए, खींच के उनको लाए और खींच के लाकर क्या किया, पहला दंड दिया क्या कि उनके सर पे अपने चरण कमल रख दिए जय नित्यानंद प्रभु की जय। तो ये देखेंगे अभी हम नित्यानंद प्रभु की कृपा की पहली इंस्टॉलमेंट रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ऊपर। कह रहे थे दंड दूंगा, तो देखने में ऐसा दंड दिया कि अपने चरण कमल नित्यानंद प्रभु जी के रघुनाथ दास गोस्वामी जी के सर पे रख दिए। कौतुक नित्यानंद सहजे दयामय, रघुनाथ कहे कुछ किच्छु है सदय। जो नित्यानंद प्रभु बड़े फनी हैं, कौतुकी हैं और साथ ही साथ क्या हैं, बड़े दयालु हैं। तो उन्होंने रघुनाथ जी को ये दूसरा दंड देना कहा, बोले तुम चोर हो, निकट नहीं आ रहे, दूर दूर भाग रहे थे, आज मैं तुम्हें दंड दूंगा, है ना। क्या दंड दूंगा, दधी चीड़ा बक्षण कराए मोर गणे, सुनी आनंदित हैला रघुनाथ मने। जितने भी मेरे साथी गण है ना, तुम्हारा दंड ये है कि सबको दही चिड़वा खिलाओ। और जब ये दंड रघुनाथ जी ने सुना कैसा लगा उनको, ओ नो नहीं दिल आनंदित हो गया, वाह वाह क्या बात है, क्या दंड दिया है ना। तो नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ जी को चोर क्यों बोला, चोर थे वो, बड़े धनी परिवार से थे, क्या चोरी की उन्होंने, चोर क्यों बोला है? हाँ तो फिर तो चोरी क्या हो गई है, क्यों भाई ऐसा क्यों, आपके पास क्यों आऊं मैं है? गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु का धन है, वेरी गुड यस। ये बोलते हैं वृंदावन दास ठाकुर चैतन्य भागवत में, अमार प्रभुर धन चैतन्य महाप्रभु। वो कहते हैं जो मेरे प्रभु हैं उनका धन क्या है, वृंदावन दास ठाकुर जी का धन के प्रभु कौन है, नित्यानंद प्रभु, मेरे प्रभु के धन कौन है? चैतन्य महाप्रभु। तो मेरा धन तुम लूटने गए थे मेरा धन लूटने के लिए शांतिपुर गए थे हैं? मेरा धन लूटने के लिए रोज घर से भाग जाते थे, चोर कहेंगे है ना, मेरा धन लूट रहे हो तो दंड दूंगा। दूसरा चोर करने का एक और कारण था कि बोले चोर की भांति दूर दूर खड़े हो, निकट नहीं आ रहे। क्यों? क्योंकि जो उन्नत वैष्णव होते हैं वो अपनी भक्ति को छिपाते हैं और ऐसा व्यवहार करते हैं जैसे बड़े साधारण से कनिष्ठ अधिकारी हो, नए नए भक्त हो, है ना। जो कनिष्ठ अधिकारी होते हैं वो अपनी भक्ति को दिखाते हैं कि देखो मैं कितना एडवांस हूं, लेकिन उन्नत भक्त होते हैं अपनी भक्ति को बड़ा छुपाते हैं। तो जो भक्ति को छुपा रहा है, उनके हृदय में भक्ति महाप्रभु के प्रति जो प्रेम, उसको वो छुपा रहे हैं, तो वो भी चोर है। अपना धन पूरा दिखा नहीं रहे कितनी भक्ति है मेरे पास, तो भी वो चोर है। इस दो प्रकार से उनको बोला कि तुम चोर हो और तुम्हें दंड दूंगा। तो दंड, जब भगवान दंड देते हैं या परम वैष्णव दंड देते हैं तो वो भी क्या बन जाता है? वरदान बन जाता है, है ना। ऐसे महाप्रभु ने भी ऐसे कहा था, महाप्रभु ने वरदान दिया था, गुंडीचा मंदिर आएगा विमार्जन, तो महाप्रभु ने बोला था कि सब लोग खूब उत्साह से सफाई करेंगे और जो जितना ज्यादा कूड़ा करकट इकट्ठा करेगा उसको विशेष प्राइज मिलेगा, विशेष पुरस्कार दिया जाएगा। और वो पुरस्कार क्या था? क्या पुरस्कार था? हम लोग भी देते हैं ना पुरस्कार, कुछ लेमिनेशन कुछ देते हैं, कुछ देते हैं। तो महाप्रभु ने क्या पुरस्कार दिया था कि जो सबसे ज्यादा उत्साह से सफाई करेगा, मात्रा में सबसे ज्यादा कूड़ा करकट इकट्ठा करेगा, उसको क्या पुरस्कार दिया था? वो तो हृदय तो स्वच्छ होगा, लेकिन पुरस्कार दिया क्या महाप्रभु ने? महाप्रसाद ना, पुरस्कार ये था कि आप सब भक्तों को प्रसाद खिलाएंगे तो जब भक्तों को मौका मिलता है दूसरे वैष्णव को प्रसाद खिलाने का, ये बहुत बड़ा पुरस्कार है। यहां पे बोल रहे हैं, दंड बोल रहे हैं नित्यानंद प्रभु कि आपको दंड देंगे, आप सबको खिलाओ। चैतन्य महाप्रभु ने आपको पुरस्कार दूंगा, तुम्हें सबको खिलाना होगा। तो उस कॉम्पिटिशन में फर्स्ट कौन आया था? कौन से वैष्णव फर्स्ट आए थे? चैतन्य महाप्रभु स्वयं आ गए थे। बोले मैं कैसे खिलाऊं, मैं तो सन्यासी हूं। तो बोले ठीक है, मैं भिक्षा करके लाऊंगा आनंद बाजार से। भिक्षा करने जैसे गए, सब आनंद बाजार के दुकानदारों को मालूम चल गया, बोले आ रहा है, आ रहा है। सब खूब प्रसाद लेके आए और सब वैष्णव ने बड़े आनंद से पाया, है ना। तो इस प्रकार से ये दंड है। तो वैष्णव जब भी दंड देते हैं तो पुरस्कार बन जाता है। शास्त्रों में ऐसे बहुत से उदाहरण है, है ना। जब परीक्षित महाराज को श्रृंगी ऋषि ने दंड दिया कि 7 दिनों में आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो परीक्षित महाराज ने इतनी शुभ परिस्थितियां प्रकट कर दी अपने प्रयास से। गंगा के तट पे गए, उनको मिलने के लिए पूरे ब्रह्मांड से बड़े बड़े ऋषिगण आ गए, सुखदेव गोस्वामी आ गए, सब स्थिति इतनी शुभ हो गई। तो प्रभुपाद तात्पर्य में कह रहे हैं कि परीक्षित महाराज इज ब्लेस्ड बाय द कर्स ऑफ श्रृंगी। श्रृंगी के श्राप से परीक्षित महाराज जी को आशीर्वाद प्राप्त हो गया। इसी प्रकार से नारद मुनि ने किनको दंड दिया था? नल कुबेर और मानिकग्रीव को, उनको भगवान का सानिध्य प्राप्त हुआ, है ना। कई बार हम देखते हैं मंदिर में भी कोई भक्त थोड़ा सही व्यवहार नहीं कर रहा तो उसको भी दंड देते हैं, जाओ भक्ति शास्त्री करो मायापुर से तो उसका भी अच्छा है, अच्छा दंड है ये, जाओ भक्ति वैभव करो, वृंदावन जाओ, मायापुर जाओ, है ना। तो ऐसा दंड दे रहे हैं कि वो भगवान के समीप जाए। पुरस्कार भी ऐसा देना चाहिए, दंड भी ऐसा देना चाहिए कि और भगवान के निकट जाए, भक्ति में आगे बढ़े। तो जब ये दंड सुना तो रघुनाथ दास गोस्वामी बहुत आनंदित हो गए। तुरंत उन्होंने बोला चलो अपने साथियों को, जाओ दही लेके आओ, चिड़वा लेके आओ, दूध लेके आओ, संदेश लेके आओ, चीनी केला सब लेके आओ। और सब भागे इधर उधर और सारा का सारा सामान लेकर आने लगे। और जो ही लोगों को मालूम चला कि उत्सव होने जा रहा है, ये तो ऑल ऑफ ए सडन स्पॉन्टेनियस था, कोई उत्सव की प्लानिंग नहीं थी, इन्विटेशन कार्ड नहीं छपे थे, सोशल मीडिया पे कुछ नहीं गया था कि दही चिड़वा फेस्टिवल होने वाला है, लेकिन आग की तरह खबर फैल गई और सभी प्रकार के सज्जन और ब्राह्मण लोग पधारने लगे बिना बुलाए, यानी कि बिना बुलाए उल्टे सज्जन लोग आए, बड़े बड़े ब्राह्मण लोग वहां पर आ गए। बड़ा उत्सव हो रहा है, कितने आ गए? कृष्णदास कविराज जी कह रहे हैं असंख्य लोग आ गए। अब इतना देखा तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने कहा ये तो पूरा पड़ेगा नहीं तुरंत ऑर्गेनाइज किया, अपने सेवकों को भेजा, जाओ दूर दूर के गांव में जाओ, जो सामान मिलता है सब खरीद के लाओ। और उन्होंने क्या किया, 200 से 400 बड़े बड़े मिट्टी के घड़े खरीद लिए और 5-7 बड़े बड़े मिट्टी के पात्र भी ले लिए। और एक ब्राह्मण ने क्या किया, नित्यानंद प्रभु की प्रसन्नता के लिए गरम दूध में चिड़वा को भिगो दिया, पानी में नहीं भिगोया, गरम दूध में। और गरम दूध में चिड़वे को भिगोने के बाद जो उसकी आधी क्वांटिटी थी उसको उन्होंने उसमें डाल दिया, उसमें मिक्स कर दिया दही चीनी और केला, है ना। और जो बाकी आधी क्वांटिटी बची उसमें जैसे दूध को उबाल उबाल कर कंडेंस कर देते हैं, रबड़ी बन जाती है, उसको रबड़ी में घी में कपूर में और चंपा के लिए एक विशेष केला होता है वो मिक्स कर दिया, है ना। कैसे बनाया चिड़वा बताओ, पहले क्या किया, गरम दूध में भिगो दिया, फिर क्या किया, नहीं नहीं उसको आधा आधा कर दिया, आधे चिड़वे के साथ क्या किया, दही चीनी और केला, ये उनके लिए हो गया, दूसरा बॉइल्ड वॉइल्ड खाते हैं घी ज्यादा नहीं खाते, उनके लिए हो गया आधा। और बाकी आधे में क्या किया, रबड़ी, ये बड़ा रिच होगा, रबड़ी के साथ घी ऊपर से, फिर कपूर और फिर चंपा केला, विशेष केला, है ना, ये डाल दिया। तो अब इस तरह से बना दिया और फिर नित्यानंद प्रभु ने स्नान किया, अपने वस्त्र बदले और चबूतरे के ऊपर बैठ गए। और तभी उस ब्राह्मण ने नित्यानंद प्रभु के सामने 7 बड़े बड़े पात्र रख दिए। चबूतरे पर नित्यानंद प्रभु के साथ उनके बहुत संगीगण बैठ गए। ये संगीगण थे रामदास, सुंदरानंद, गदाधर दास, मुरारी, कमलाकर, सदाशिव, पुरंदर, धनंजय, जगदीश, परमेश्वर दास, महेश, गौरीदास, होड़ कृष्णदास, उदाहरण दत्त, सबके सब चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के निजी पार्षद बैठ गए। और उस समय अभी बात और फैलती जा रही है कि भैया फेस्टिवल हो रहा है, फेस्टिवल हो रहा है, पानी हाटी के गंगा के तट पे बहुत बड़ा उत्सव हो रहा है। तो पहले भी बड़े ब्राह्मण और सज्जनगण आए थे, अब और बड़े बड़े विद्वान भट्टाचार्य ब्राह्मण और पुरोहित भी वहां पर आ गए। अब ऐसे ब्राह्मण पुरोहित आए तो उनका कोई तिरस्कार नहीं किया गया, नित्यानंद प्रभु ने उनको बड़े आदर दिया, आइए आइए आप भी आइए, और सबको चबूतरे पे बिठा दिया। अब चबूतरे पे बहुत बड़ा सर्कल बन गया, वृक्ष है, वृक्ष के आसपास चबूतरा है, वहां नित्यानंद प्रभु हैं, 7 बड़े बड़े घड़े रखे हैं वहां पे और सारे पार्षदों ने उनको घेर लिया। अब बाकी हैं वैष्णव, वो कहां बैठे, तो चबूतरे के नीचे बैठ गए, बड़ा भर गया। फिर बाकी लोग और आए, और कहां बैठे, जगह ही नहीं, तो बैठते 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 गंगा के तट तक पहुंच गई बात, है ना। जैसे कई बार यहाँ फीस होती है, इतनी भीड़ है, गेट के बाहर लाइन लगी हुई है खूब लंबी, है ना। तो चबूतरे पे बैठे हैं, चबूतरे के नीचे बैठे हैं, बैठते 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 गंगा के तट पे आ गए, फिर भी भीड़ खत्म नहीं हो रही। और फिर ब्राह्मण और बाकी जो वैष्णव गण थे वो गंगा के अंदर चले गए कमर तक गंगा के पानी में चले गए। और इन सब को जो चबूतरे पे बैठे हैं, जो चबूतरे के नीचे बैठे हैं, जो गंगा के तट पे बैठे हैं, जो गंगा के अंदर हैं, सबको 2-2 मिट्टी के पात्र मिले। एक में चिड़वा था दही के साथ, दूसरे में चिड़वा था रबड़ी के साथ, दोनों वैरायटी, और सब लेकर पहुंच गए। और इन सबको सर्व कर रहे थे 20 वैष्णव गण, जो प्रसादम सर्विंग पार्टी थी उसमें 20 लोग थे, है ना। क्या सेवा की होगी, आप सोचिए, भाग भाग के, यानी कि एक जगह पे सब है, इतना फैला हुआ। तो 20 वैष्णव गणों ने इनकी सेवा की। तो उसी समय वहां पर राघव पंडित आ गए, है ना। राघव पंडित ने जब देखा, हेना कहना आयला तथा राघव पंडित हासी ते लागीला देखा हुआ विस्मित। हंसने लगे, अरे क्या सीन है सब जगह लोग बैठे हैं, सबके हाथ में 2-2 पात्र हैं, गंगा के अंदर भी चले गए लोग, तो हंसे और बड़े विस्मित हुए। और उन्होंने क्या किया था, नित्यानंद प्रभु के लिए अपने घर में बहुत सुंदर व्यंजन बनाए थे घी के साथ, और वो ये अपेक्षा कर रहे थे कि नित्यानंद प्रभु उनके घर में आएंगे, प्रसाद स्वीकार करेंगे। तो नित्यानंद राघव पंडित ने कहा नित्यानंद प्रभु से, प्रभुर कहे तोमा लागी भोग लागैला, तुम्ही ऐ उत्सव कर घर प्रसिद्ध रहिला। तुम महोदय, मैंने आपके लिए भोग लगा के रखा है घर में और आप यहाँ उत्सव कर रहे हैं, और वो प्रसाद घर में ही पड़ा रह गया। प्रभु कहे ए द्रव्य दिने करी है भोजन, राते तो मार घरे प्रसाद करेमु भक्षण। बोले दिन में अब यही पाऊंगा, तुम्हारे यहाँ रात्रि को पाऊंगा, है ना। क्यों भाई ऐसा क्यों, गोप जाति आमी बहु गोप गण संगे, आमी सुख पाई ऐ पुनिन भोजन रंगे, मैं तो गोप हूं भाई, नदी के तट पे ग्वाल बालों के संग में भोजन करने का मुझे बहुत आनंद आता है। तो नित्यानंद प्रभु ने राघव पंडित को भी वहीं बैठा लिया और उनको भी दो पात्र दिए, बोलो चलो तुम भी यही खाओ। अब जब सब जगह चिड़वा परोस दिया गया, अभी किसी ने खाना शुरू नहीं किया, सब लोग नित्यानंद प्रभु की तरफ देख रहे थे कि कब महाप्रसाद गोविंद बोलेंगे और शुरू करेंगे। लेकिन नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, ध्यान लगाया, और ध्यान में किनको स्मरण किया, चैतन्य महाप्रभु को। और जैसे चैतन्य महाप्रभु का स्मरण किया, चैतन्य महाप्रभु वहां पर प्रकट हो गए तुरंत, है ना। कृष्णदास कविराज जी कहते हैं चार ऐसे स्थान हैं जहां पे महाप्रभु हमेशा प्रकट रहते हैं। कौन कौन से स्थान हैं? सच्ची माता जब भी भोग लगाती है महाप्रभु वहां पर आते हैं, पर्सनली पाते हैं, और जहां नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते हैं, नृत्य करते हैं, वहां चैतन्य महाप्रभु आते हैं। तीसरा राघव पंडित, राघव पंडित की जब भी भोग लगाते हैं, राघव पंडित के राधा गोपीनाथ विग्रह हैं, और महाप्रभु के लिए अलग से एक वो प्लेट रखते थे, और रोज महाप्रभु वहां पर आते हैं और प्रसाद पाते हैं और कई बार दर्शन भी देते हैं, है ना, राघव पंडित जी के यहाँ और शिवा सांगन में। ये चार स्थान है, शिवा सांगन, राघव पंडित जी का घर, जब जहां जहां नित्यानंद प्रभु कीर्तन करते हैं, और सच्ची माता। तो यहाँ पे खाली स्मरण किया, चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, और जब वो प्रकट हुए तो नित्यानंद प्रभु खड़े हो गए, और उन्होंने देखा कि किस प्रकार से महाप्रभु ने देखा, नित्यानंद प्रभु ने, इतनी भीड़ लगी हुई है भक्तों की, और सबके हाथ में दो दो पात्र हैं। तो फिर नित्यानंद प्रभु ने क्या किया, प्रत्येक पात्र से उठाया और महाप्रभु के मुख में घुसाया, जबरदस्ती पूरा भर दिया महाप्रभु ने, है ना, हंसी परिहास करते हुए उठाया और उनके मुंह में डाल दिया। और फिर महाप्रभु ने भी क्या किया, हर एक पात्र से उठाया और नित्यानंद प्रभु के मुंह में डाल दिया। ये महाप्रभु किसी को नजर नहीं आ रहे थे, उन लोग सोच रहे थे हो क्या रहे और ये करते करते चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु हर एक ग्रुप में गए, कोई महाप्रभु को देख नहीं पा रहा था, बहुत ही जो भाग्यशाली भक्त थे उनको महाप्रभु के दर्शन हो रहे थे। तो इस प्रकार से कोई समझ नहीं पा रहा था नित्यानंद प्रभु क्या कर रहे हैं, और दोनों हंस रहे थे। फिर नित्यानंद प्रभु और चैतन्य महाप्रभु वापस आए, उन्होंने अपना स्थान पाया, और फिर दोनों भाई एक साथ चिड़वा खाने लगे, है ना। और इस प्रकार से जब देखा कि नित्यानंद प्रभु ने कि महाप्रभु ये प्रसाद पा रहे हैं, तो वो बहुत प्रसन्न हुए, और फिर उन्होंने क्या किया, आज्ञा दिला हरि बलि करह भोजन, हरि हरि ध्वनि उठी भरिल भुवन। फिर नित्यानंद प्रभु ने आज्ञा दी कि सभी लोग क्या बोलो, हरि हरि, और फिर बोलो चलो भोजन शुरू करो। तो भक्तों ने हरि हरि बोला और तुरंत पाना शुरू किया। और उनको किस बात का स्मरण हो रहा था कि जिस प्रकार कृष्ण और बलराम यमुना के तट पे बैठते थे और सारे ग्वालबाल साथ में होते थे, यहाँ गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु बैठे हैं और सब ग्वालबाल हम बैठे हैं। तो इस प्रकार से नित्यानंद महाप्रभु कृपालु उदार, रघुनाथर भाग्य एत कैला अंगीकार। चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु अत्यंत दयालु तथा उदार हैं, यह तो रघुनाथ का सौभाग्य था कि उन्होंने ये सब व्यवहार स्वीकार कर लिए। नित्यानंद प्रभाव कृपा जानी वे कौन जन, महाप्रभु आने कराए पुलिना भोजन। नित्यानंद प्रभु के प्रभाव और कृपा वो कौन समझ सकता है, वे इतने शक्तिशाली हैं कि उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को गंगा तट पे चिड़वा खाने के लिए प्रेरित कर दिया। तो पहली कृपा क्या की नित्यानंद प्रभु ने, रघुनाथ दास गोस्वामी जी के ऊपर अपने चरण रखे। दूसरी कृपा क्या की, उनको आज्ञा दी वैष्णव सेवा करने का मौका दिया। तीसरी कृपा क्या की, चैतन्य महाप्रभु को अपने प्रभाव से बुलाया और चैतन्य महाप्रभु ने भी वो स्वीकार किया, रघुनाथ दास गोस्वामी जी की सेवा को स्वीकार किया। तो इस प्रकार से जब सभी ग्वाल उनके पार्षदों ने खाते हुए देखा तो वो बहुत प्रसन्न हुए। अब क्या हुआ, बात दूर दूर गांव तक पहुंच गई, और जितने दुकानदार थे दूसरे गांवों के वो भी आ गए कि अच्छी मार्केट है, बड़ा उत्सव चल रहा है, अपना सारा सामान लेकर आ गए। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी, नहीं करने, नहीं बहुत हो गया बहुत, ले आओ जो भी है ले आओ, और वो भी लिया, वो भी बना दिया, और उनको जो दुकानदार थे उनसे सामान खरीदा भी और उनको भोजन भी कराया। और जब दूसरे लोगों तक ये बात चली तो बोले देखने जाते हैं क्या हो रहा है भाई, बहुत बढ़िया, ऐसे लोग आते थे बड़े, कितना फनी सीन है, क्या बढ़िया चल रहा है, उनको भी बिठाया, उनको भी प्रसाद खिलाया। तो सबको बड़े प्रेम से उन्होंने प्रसाद खिलाया। उसके बाद नित्यानंद प्रभु ने जब पूरा प्रसाद पा लिया, उन्होंने मुख धोया और रघुनाथ दास गोस्वामी को कितने पात्र रखे थे नित्यानंद प्रभु के पास? सात। चार पात्रों में बचा हुआ भोजन उन्होंने किसको दिया? रघुनाथ दास गोस्वामी को। ये उनके ऊपर कौन सी कृपा होगी, कृपा की कौन सी किस्त है? चौथे अपना महाप्रसाद उन्होंने रघुनाथ दास जी को दिया, और जब बाकी तीन पात्र थे एक ब्राह्मण को दिए कि बाकी सबको वो बांटते हैं। तो रघुनाथ दास गोस्वामी जी ने नित्यानंद प्रभु का उच्चिष्ट स्वीकार किया और बाकी का जो बचा हुआ जो उच्चिष्ट था वो अपने सारे सेवकों में बांट दिया। तो इस प्रकार से ये दही चिड़वा उत्सव होता है। फिर नित्यानंद प्रभु विश्राम करते हैं और शाम को वो जाते हैं कहाँ पे, क्या बोला था कहाँ जाएंगे वो? राघव पंडित का। वहां जाते हैं अपने पार्षदों के साथ और वहां पे जाके सब पार्षदों को बोलते हैं खूब नृत्य करो, और सभी पार्षदगण खूब नृत्य करते हैं, नित्यानंद प्रभु भी खूब नृत्य करते हैं, और कहते हैं कि नित्यानंद प्रभु का जो नृत्य है तीनों लोकों में ऐसा कोई नृत्य नहीं कर सकता है ना, इतना सुंदर नृत्य। जब पानी हाटी में नित्यानंद प्रभु आते हैं चैतन्य महाप्रभु के आदेश में, वो महाप्रभु के प्रेम में इतने उन्मत्त होते हैं कि वो पानी हाटी पहुंच ही नहीं पाते, नृत्य करते करते कभी आगे चले जाते हैं, फिर पूछते हैं भैया पानी हाटी कहाँ है, बोले वो तो पीछे रह गया, पीछे आते हैं तो बहुत पीछे चले जाते हैं, बोले पानी हाटी का वो यहां रह गया, वो कितने दिन तो ऐसे ही चलते रहते हैं, पानी हाटी पहुंच ही नहीं पाते। और फिर जब पानी हाटी पहुंचते हैं तो ऐसा नृत्य करते हैं, ऐसा नृत्य करते हैं, तीन महीने तक लगातार नृत्य, और वो नृत्य देखकर पूरे जो पानी हाटी के निवासी थे घर छोड़कर बाहर आ जाते हैं, और छोटे छोटे बच्चे भी पेड़ पर चढ़ जाते थे, और उनमें भी इतनी शक्ति आ जाती, इतने पागल हो जाते, बड़े बड़े पेड़ को उखाड़ के फेंक देते। ये डिस्क्रिप्शन है चैतन्य भागवत में। तो नित्यानंद प्रभु का जो नृत्य इतना प्रेमपूर्ण होता था, इतना सुंदर कि उसको देखने के लिए स्वयं चैतन्य महाप्रभु आते थे, देखने आते थे। तो नित्यानंद प्रभु नृत्य कर रहे हैं और चैतन्य महाप्रभु उनको देखने आए हैं, और देखने आए हैं तो चैतन्य महाप्रभु साथ में नाचते हैं, खूब नाचते हैं। तो फिर रघुनाथ राघव पंडित कहते हैं बहुत रात्रि हो गई, अब नृत्य बंद करें, थोड़ा भोजन स्वीकार करें। तो फिर दोनों बैठ जाते हैं और राघव पंडित दोनों भाइयों के समान प्रसाद लेके आते हैं और सभी वैष्णव को प्रसाद बांटते हैं, तरह तरह की मिठाइयां, तरह तरह की सब्जियां, तरह तरह के चावल, खीर, संदेश, एक से बढ़कर एक। कहते हैं जो राघव पंडित हैं उनके घर में स्वयं राधा रानी आती है पकवान बनाने, इतने प्रिय भक्त है, और राधा रानी जी की तो आशीर्वाद प्राप्त है दुर्वासा मुनि का कि वो जो भी बनाएंगे अमृत तुल्य होगा। तो इस प्रकार से हालांकि चैतन्य महाप्रभु प्रतिदिन आते हैं राघव पंडित के घर में प्रसाद स्वीकार भोजन स्वीकार करने, फिर भी राघव पंडित यहां लिखा गया है कि दोनों भाइयों को बहुत ही यत्न करके, बहुत ही सावधानी पूर्वक वो उनको सर्व कर रहे थे, और वो प्रसाद इतना सुंदर था, इतना सुगंधित, और देखने में इतना सुंदर, और खाने में इतना सुंदर, गौरांग महाप्रभु नित्यानंद प्रभु ने पूरा का पूरा प्रसाद पा लिया, कोई अवशेष छोड़ा ही नहीं। पूरा प्रसाद पा लिया। और इसके बाद दोनों भाइयों ने फिर अपने हाथ मुंह धोए और तब राघव पंडित ने उनके चंदन का लेप किया इत्यादि किया। फिर सब भक्तों ने रघुनाथ दास जी को बोला कि आप भी प्रसाद स्वीकार कर लिए, राघव पंडित ने कहा ये बाद में लेंगे। तो जब सबने प्रसाद पा लिया तो जिस पात्र में चैतन्य महाप्रभु ने प्रसाद पाया था उसी पात्र में उन्होंने रघुनाथ दास जी को प्रसाद दिया है ना। तो इस प्रकार से उन्होंने बोला कहिला चैतन्य गोसाई करी आछे भोजन, तार शेष पाइले तोमार खंडिल बंधन। राघव पंडित ने कहा श्री चैतन्य महाप्रभु ने भोजन किया है, यदि तुम के शेष को ग्रहण करोगे तो तुम अपने परिवार के बंधन से छूट जाओगे है ना। तो इस प्रकार से जब ये चैतन्य महाप्रभु और उन प्रसाद पा लिया तो, और ये पूरा जब नित्यानंद प्रभु वापिस चले गए तो फिर अगले दिन सुबह रघुनाथ दास गोस्वामी राघव पंडित जी के साथ जाते हैं। अब नित्यानंद प्रभु उसी वृक्ष के उस चबूतरे पे बैठे हैं जिसमें पिछले दिन बैठे थे। तो रघुनाथ दास जहाँ वहाँ जाके राघव पंडित के द्वारा अपनी इच्छा प्रकट करते हैं है ना। तो इच्छा क्या प्रकट करते हैं, नित्यानंद प्रभु के सामने जाते हैं, अधम पामर मोई दीन जीवाधम, अधम पामर मोई हीन जीवाधम, मोर इच्छा हए पाए चैतन्य चरण। बोले मैं बहुत अधम हूं, पापी हूं, पतित हूं, तिरस्कृत हूं, तो भी मैं चैतन्य महाप्रभु के चरण कमलों की शरण पाने का इच्छुक हूं। महाप्रभु के चरण पाने की योग्यता यही है कि हमें अपने आप को क्या समझना है, अधम, पापी, पतित और तिरस्कृत, है ना। महाप्रभु पतित पावन है, उनका उद्धार करेंगे जो अपने आप को हृदय से पतित मानते हैं, है ना। और रघुनाथ दास गोस्वामी ये हृदय से बोल रहे हैं कि मैं बहुत अधम हूं, अत्यंत पापी हूं, पतित हूं, तिरस्कृत हूं, फिर भी मैं महाप्रभु के चरणों को स्वीकार करना चाहता हूं। कैसे, बोले मेरी क्या ये इच्छा कैसे है। वामन हैया ये न चांद धरी बारे चाहे, अनेक यत्न कैनु ताते कबो सिद्ध नाए। मेरी इच्छा वैसी है जैसे एक बोना व्यक्ति चांद को पकड़ना चाहता है। क्या छोटा सा बोना व्यक्ति चांद को पकड़ सकता है? कभी सफल नहीं हो सकता। इसलिए बोली जितनी बारी मैंने भागा घर से, घरेलू संबंध तोड़ने चाहे, लेकिन मेरे माता और पिता ने दुर्भाग्यवश हमेशा मुझे बांध के रखा। तुम्हार कृपा बिना के चैतन्य ना पाए, तुम्हें कृपा कैले तार अधम में हाँ पाए। आपकी कृपा के बिना कोई भी चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त नहीं कर सकता। यदि आप कृपालु हो तो मुझ अधम से अधम व्यक्ति को भी आप चरण कमलों की शरण पा सकता है। हालांकि मैं अयोग्य हूं, मेरे में कोई योग्यता नहीं है, फिर भी बहुत डरते डरते मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूं कि आप मुझे चैतन्य महाप्रभु की शरण प्रदान करवा दें, है ना। मैं योग्य नहीं हूं ये कहते हुए भी मुझे बहुत डर लग रहा है ना। और आपसे वे निवेदन कर रहे हैं क्या, मोर माथे पद धरी करह प्रसाद, निर्विघ्ने चैतन्य पाए कर आशीर्वाद। आप मेरे सर पे अपने चरण रखकर मुझे आशीर्वाद दें कि बिना कठिनाई के श्री चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त कर सको। मैं आपसे इसी आशीर्वाद के लिए प्रार्थना करता हूं। बहुत सुंदर प्रार्थना है, हम सबको भी नित्यानंद प्रभु से ऐसे ही प्रार्थना करनी चाहिए, है ना, कि बिना कठिनाई के मैं चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त कर सकूं। जब हम महाप्रभु की शरण प्राप्त करने का इच्छा रखते हैं तो कई प्रकार की कठिनाइयां आती हैं, बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। बाहरी रूप से जैसे रघुनाथ दास गोस्वामी जी के परिवार वाले, तो हमारे भी परिवार वाले हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं, जो कि अज्ञानता में जानते नहीं कि वो क्या करने जा रहे हैं, हम ना वो समझते हैं, वो असुरक्षित महसूस करते हैं, लेकिन उनको मालूम चाहिए सबसे बड़ी सुरक्षा है चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण। जो महाप्रभु की शरण ग्रहण करता है, महाप्रभु उसके और उसके पूरे कुल की रक्षा करते हैं। महाप्रभु ने श्रीवास ठाकुर को बोला था कि मैं यहाँ पे, हम सभी भक्त लोग यहाँ पे हरिनाम संकीर्तन करते हैं, तो श्रीवास ठाकुर तुम क्या, तुम्हारे परिवार वाले क्या, तुम्हारे घर के चूहे बिल्ली कीड़े मकोड़े हैं वो भी तर जाएंगे, इतनी कृपा है। तो लेकिन अज्ञानतावश लोग बड़े असुरक्षित हो जाते हैं, तरह तरह की बाधाएं आ रही थी रघुनाथ दास जी के जीवन में। तो ये प्रार्थना करनी है कि मेरे जीवन में जो कठिनाइयां आ रही हैं महाप्रभु के शरण प्राप्त करने में, कृपया करके आप उन विघ्नों को दूर कर दीजिए। मेरी आपसे ये प्रार्थना है, ये बाहरी रूप से। और आंतरिक रूप से हमारे तरह तरह के अनर्थ हमें रोकते हैं महाप्रभु की पूर्ण रूप से शरण ग्रहण करने के लिए, तो हमें नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करनी चाहिए। आज का दिन बहुत अच्छा है, नित्यानंद प्रभु के चरणों में हम प्रार्थना करें। तो रघुनाथ दास गोस्वामी की ये याचना सुनकर नित्यानंद प्रभु हंसे और सभी भक्तों से बोले, इहार विषय सुख इंद्र सुख समय। ये जो रघुनाथ दास है जो बोल रहे मेरे में कोई योग्यता नहीं है, मैं बहुत अधम हूं, पतित हूं, तिरस्कृत हूं, आप सब जानते हैं, सब भक्तों को बता रहे हैं कि इसके पास जो विषय सुख है इंद्र के समान है, लेकिन क्या, चैतन्य कृपाते सहे नहीं भाई मने, सबे आशीर्वाद कर पाहुक चैतन्य चरण है। लेकिन इसके ऊपर चैतन्य महाप्रभु कृपा हो गई, कुछ नहीं भाता इनको, इंद्र के समान सुख है, कुछ नहीं भारे। फिर आगे क्या करें, आप सब इनको आशीर्वाद दें कि इनको चैतन्य महाप्रभु के चरण प्राप्त हो, है ना, सबको आज्ञा देते हैं, है ना। तो ये नित्यानंद प्रभु की कौन सी कृपा का इंस्टॉलमेंट हुआ, पांचवा, है ना। और इसके बाद उन्होंने क्या किया कि आगे बोलते हैं कि जिसको कृष्ण के चरणों की गंध भी प्राप्त हो जाती है, उसके लिए ब्रह्म लोक का भी सुख तुच्छवत है, कुछ नहीं है उसके सामने। तो तभी नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ जी को अपने पास बुलाया, तब वो घबराए नहीं इस बारी रघुनाथ जी। तबे रघुनाथ प्रभु निकट बोलाइला, तार माथे पदी धरी कहीं तेला गीला। तब नित्यानंद प्रभु ने रघुनाथ दास जी को अपने पास बुलाया और उनके अपने उनके सर पर अपने चरण रखे। हरी बोल, ये उनकी कृपा की छठी किश्त है। और बोले, तुम्ही ये कराइला ए पोले ना भोजन, तोमाय कृपा करी गौर कैला आगमन। क्योंकि तुमने गंगा के तट पे इस भोजन की व्यवस्था की, इसलिए चैतन्य महाप्रभु तुम पर अपनी कृपा दिखाने के लिए यहाँ पर आए। अपनी अहेतु की कृपा से उन्होंने दूध और चिड़वा दही चिड़वा को स्वीकार किया और चैतन्य महाप्रभु अब तुम्हारा उद्धार करने के लिए स्वयं यहाँ पर आए। अब समझ लो तुम्हारे सारे बंधन दूर हो गए, महाप्रभु तुम्हें स्वीकार कर लेंगे। और अपने सचिव, अपने जो उनके सेक्रेटरी हैं, कौन सेक्रेटरी हैं महाप्रभु के, स्वरूप दामोदर, उसके अधीन तुम्हें रख देंगे। इस तरह तुम उनके सर्वश्रेष्ठ विशिष्ट अंतरंग सेवकों में से एक बन जाओगे और चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त करोगे। अब आश्वस्त होकर तुम घर लौट सकते हो और शीघ्र ही बिना किसी अवरोध के तुम चैतन्य महाप्रभु की शरण प्राप्त कर लोगे। तो नित्यानंद प्रभु ने समस्त भक्तों को कहा कि आप रघुनाथ दास को क्या दो, आशीर्वाद दो। और रघुनाथ दास जी ने भी सबके चरण कमलों में बड़े आदर से वंदना की। इसके बाद नित्यानंद रघुनाथ दास जी गए नहीं और राघव पंडित जी को थोड़ा एकांत स्थान पे ले गए और उन्होंने बोले कि मैं नित्यानंद प्रभु की कुछ सेवा करना चाहता हूँ। तो उन्होंने नित्यानंद प्रभु के लिए 100 सिक्के और 7 तोले सोना ये नित्यानंद प्रभु के खजांची को बुलाया और उन्हें दिया और उनको बोला, देखो सावधानी से अभी नित्यानंद प्रभु कुछ मत बताना, जब घर पहुंच जाएंगे तब ये बताना कि मैंने ये भेंट दी। फिर नहीं रुके, फिर उन्होंने राघव पंडित से कुछ कंसल्ट किया और कहा, देखिए जितने भी वैष्णव हैं इनकी भी मैं सेवा करना चाहता हूँ, तो आप मुझे बताइए हर एक को मैं 20 सिक्के 15 सिक्के 12 सिक्के 10 सिक्के या 5 सिक्के जैसे जैसे आप बताएंगे मैं कर देता हूँ। पूरी लिस्ट बनाई गई है ना, नाम लिखे गए, पूरा ऑर्गेनाइज है, नाम लिखे गए किसको कितने सिक्के देने हैं, उसके एनवलप बनाए गए होंगे, कुछ किए होंगे, और फिर सबको दिया गया और इस प्रकार से पूरा समारोह समाप्त होता है ना। तो बहुत ही सुंदर है, हमें तो बीच बीच में स्किप कर दिया, आप घर जाके इसको पढ़ सकते हैं। तो यहाँ हम देखते हैं नित्यानंद प्रभु कितने कृपालु हैं। 6 किश्तें दी, पहली किश्त कौन सी थी जो कृपा की चरण रखे, दूसरी किश्त क्या थी वैष्णव सेवा का मौका दिया, तीसरा किश्त क्या था महाप्रभु को इनवाइट किया, महाप्रभु ने भी वो प्रसाद स्वीकार किया, भोग स्वीकार किया, क्षमा करें, और अपना महाप्रसाद दिया, चौथा पांचवा सभी वैष्णवों को कहा कि आप इनको आशीर्वाद दें, और छठा फिर से अपने चरण कमल उनके सर पे रखे, है ना। तो नित्यानंद प्रभु ये हमें सिखा रहे हैं कि जो असली कृपा है वो किसी को वैष्णव सेवा करने का मौका मिले। और उन्होंने रघुनाथ दास जी को ये आदेश दिया, है ना। और नित्यानंद प्रभु विशेषकर जो गृहस्थ आश्रम में भक्त हैं उनके लिए संदेश दे रहे हैं कि उनको भक्तों की सेवा अवश्य करनी चाहिए, है ना, वैष्णवों की सेवा में जुड़े। और क्योंकि गृहस्थ आश्रम में जो रहने वाले भक्त हैं, जैसे भागवतम के 7वें स्कंद में हम देखते हैं 14वां अध्याय है, नारद मुनि जी युधिष्ठिर महाराज को वर्णन करते हैं और उसमें देखते हैं कि जो गृहस्थ आश्रम में स्थित भक्त हैं उनको निश्चित रूप से भक्तों को घर में बुलाना चाहिए। घर में ही ना बुलाएं, यहाँ पे सामूहिक सबको इकट्ठा करके प्रसाद खिला रहे हैं ना, तो सामूहिक रूप से खिलाएं। एक दो को तो हम बुलाते ही रहते हैं, चलो एक दो आ जाओ, सामूहिक रूप से प्रीति भोज ब्राह्मण भोज सबको खिलाएं, वैष्णव भोज सबको खिलाया, है ना। तो ये भी एक है। और दूसरा, रघुनाथ दास गोस्वामी से हम क्या सीखते हैं, जैसे ये आदेश प्राप्त हुआ आनंद होइला मन, उनका मन बहुत खुश हो गया, है ना, ये सेवा का मुझे मौका मिला, है ना। तो ऐसा प्रसाद सबको भक्तों को खिलाने का मौका मिले बहुत आनंदित होना चाहिए, है ना, बोले ये तो मेरा परम कर्तव्य है, उन्होंने खिलाया। श्रीमद भागवतम के 5वें स्कंद में के अंत में जब 28 प्रकार के नरकों का वर्णन आता है तो वहां पे एक नरक उन लोगों के लिए भी है जो गृहस्थ आश्रम में है, लेकिन जब भक्त वो साधु उनके घर में आते हैं तो बड़ा उल्टा सीधा मुंह बना लेते हैं, उनका तिरस्कार करते हैं, कोई भी अतिथि है उसका सही सत्कार नहीं करते, उसके लिए विशेष नर्क वो रखा मतलब कि ये इतना बड़ा है कि गृहस्थ आश्रम में जो स्थित भक्त हैं उनका एक कर्तव्य ड्यूटी है कि प्रसाद भक्तों को खिलाना, और इससे ऊपर हम शुद्ध होते हैं, है ना। और हम क्या सीख सकते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी के व्यवहार से? कितना लॉलियम था उनके हृदय में महाप्रभु की शरण प्राप्त करने के लिए। इसके बाद जब दही चिड़वा पूरा उत्सव हुआ तो फिर ऐसे नहीं चले गए, उन्होंने फिर क्या दिया, नित्यानंद प्रभु के लिए कुछ दक्षिणा दी, सभी भक्तों के लिए कोई दक्षिणा दी, क्योंकि जो भक्त लोग जो गृहस्थ आश्रम में स्थित भक्त हैं एक नियम है उनके द्वारा जो उन्होंने आय अर्जित की है उस आय के अर्जन में निश्चित रूप से कलयुग में कुछ ना कुछ पाप करने पड़ते हैं, उसके द्वारा आय से द्वारा वो भोजन उन्होंने प्राप्त किया, उनको पापों से मुक्त किया, तो पापों से मुक्त कर लिया तो कृतार्थ प्रकट करने के लिए, कृतज्ञता प्रकट करने के लिए उनको फिर कुछ दक्षिणा देते हैं, ये दक्षिणा का उद्देश्य होता है। और ये भी कहा जाता है कि उन्होंने मेहनत की, दंत घिसाई अपने दांतों से उसको चबाया तो ये दंत घिसाई दी जाती है कि आपने इतनी मेहनत की, हमारे द्वारा जो था उसको चबाया आपने, ये बहुत बड़ा काम मेहनत की आपने, ये भी स्वीकार कीजिए। तो ये कल्चर है ना। और जैसे हम इस्कॉन में हैं भक्त, तो इस्कॉन के जो विशेषकर वैराग्य आश्रम हैं, सन्यासी हैं जो ब्रह्मचारी हैं, इनको घर में लोग बनलाते हैं और इनको कई बार दक्षिणा देते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना चाहिए क्योंकि देखिए नित्यानंद प्रभु किससे कंसल्ट कर रहे हैं, राघव पंडित से, उनसे पूछ कर क्या करना है, कैसे करना है, किसको कितना देना चाहिए नहीं चाहिए, ये पूछ के, है ना। तो भक्तों में कई बार गृहस्थ आश्रम स्थित भक्त हैं, बड़े भाव उत्पन्न होते हैं कि हमने प्रभु जी की सेवा करनी है, प्रभु की सेवा करनी है, तो कई बार उनके दिए हुए उपहार से या दक्षिणा से हो सकता है जो जिस ब्रह्मचारी को या किसको दिया जा रहा है वो भटक जाए अपने भक्ति मार्ग से, क्योंकि यहाँ पे इस्कॉन संस्था में सभी प्रकारों के भक्तों का पूर्ण रूप से ध्यान रखा जाता है, कोई बेचारा नहीं है यहाँ पे ना। कई बार जो हाउस होल्डर्स होते हैं घर परिवार में रहने वाले, उनको लगता है कि ये बेचारे हैं, क्या खाते पीते होंगे वहां पे, आप जानते हैं मंदिर में कितना सुंदर भोजन है, प्रसाद है, इनको लगता है बेचारे हैं, इनके पास ना पहने को कपड़े हैं ना खाने को कुछ है, हो सकता है बेचारा दिखने में पतला दुबला लगता है, उसका मतलब खाने का मतलब कमी नहीं। कई बार एक ब्रह्मचारी को इनवाइट करते हैं तो दिखने में बहुत पतले दुबले, तो माता जी पूछते हैं पाइए प्रभु जी, हाँ बनाइए जितना बना सकते हैं ना, वो पाएगा एक चपाती दो चपाती तीन चपाती, माता जी सोचे और कितना पाएगा, एक चार और, गैस बंद कर देती हैं तो वो पाई जा रहा है, उसका उत्साह देख के प्रभु जी और लेंगे, हाँ बिल्कुल लूंगा क्यों नहीं। तो फिर बनाती हैं, वो बनाई खाई जा रहे हैं पाई जा रहे हैं, फिर उनको वामन देव जी की याद आती है कि वामन अवतार भी छोटे से थे और जब लेने आए तो कितना ले लिया। तो दिखने में हो सकता है कोई भक्त आपको पतला दुबला लगे लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत बढ़िया बात है, यहाँ पे हर प्रकार की सुख सुविधा है। तो अगर आप देना चाहते हैं, निश्चित रूप से ये कल्चर है कि दक्षिणा देनी भी चाहिए, तो इस ढंग से देनी चाहिए कि भक्तों का नुकसान ना हो, और ऊपर के अधिकारियों से पूछ कर हम दे सकते हैं कि भक्तों की क्या आवश्यकता है, उनको क्या देना है, ताकि जो भी हम करें भक्तों की भक्ति के लिए लाभदायक हो, है ना। कई बार ऐसा होता है कि भक्त लोग फिर लेटेस्ट गैजेट देते हैं ब्रह्मचारी को, कोई बढ़िया सा आईफोन दे दिया बढ़िया सा, वो भी अभी नहीं है, अभी हम नहीं देंगे आपको, तो इस प्रकार से वो भी है, या फिर सीधा इस्कॉन संस्था के नाम हम चेक काट के दें, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, या फिर जो भक्तों को हम व्यक्तिगत उपहार भी देना चाहते हैं तो किसी उनके ऊपर के अधिकारियों से कंसल्ट करके दे, आपकी भावना का भी पूरा आदर होगा और भक्तों के लिए भी वो लाभदायक होगा, है ना। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि सुंदर, बहुत सुंदर उत्सव है, और इस उत्सव में हम एक वैष्णव कल्चर भी देखते हैं, है ना। इतना बड़ा उत्सव मनाया गया, फीस में कोई इन्विटेशन नहीं दी गई, सभी भक्त लोग आ रहे हैं, बड़े बड़े ब्राह्मण आ रहे हैं, सज्जन आ रहे हैं, विद्वान आ रहे हैं, उनका स्वागत किया गया, और कहीं ऐसे दुकानदार आने उनको बिठा के खिलाया गया, कहीं ऐसे देखने आए मजा चल रहा है क्या हो रहा है उनको भी बिठा के बड़े प्रेम से खिलाया गया। तो एक कल्चर है, है ना। और साथ में अगर चाहते तो नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास जी को ये भी बोल सकते थे कि जितने भी वैष्णव हैं सबको एक बढ़िया बढ़िया गाड़ी दे दो, मर्सिडीज बेंज दे दो, है ना, बढ़िया सा दे दो, तो रघुनाथ दास जी के पास इतना सामर्थ्य था सबको दे सकते थे, लेकिन क्या बोला, दही चिड़वा दे दो, आज का मौसम देखेगा कितनी गर्मी है, क्या सूटेबल है भक्तों के लिए, है ना, जो सूटेबल है वो बताया, ये इनको खिलाओ। और साथ में वो ये भी बताना चाहते थे नित्यानंद प्रभु को, नित्यानंद प्रभु रघुनाथ दास जी को, हालांकि दही चड़वा कुछ भी नहीं है लेकिन आप देंगे, आपसे ज्यादा धनवान तो ये भक्तगण है जो आपको आशीर्वाद देंगे, है ना। कौन सा बढ़िया धन है, वो चिड़वा देने वाला कि जो पा के आशीर्वाद दे रहे हैं, है ना। तो ये जो आशीर्वाद आपको मिलेगा इसके समान तो कुछ भी नहीं है, इसलिए दही चड़वा खिलाओ और सबका आशीर्वाद लो। तो यहां बता रहे हैं कि वैष्णव सेवा कितनी महत्वपूर्ण है। बिना भक्तों के और गुरु की कृपा के हम डायरेक्टली भगवान को अप्रोच नहीं कर सकते, है ना, शॉर्टकट नहीं है। यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो, यस्य अप्रसादात नागति कुतोपि। गुरु की कृपा से भगवान प्राप्त होते हैं और गुरु की कृपा प्राप्त होती है अगर हम भक्तों को प्रसन्न करें। नित्यानंद प्रभु कहा कि सबको प्रसन्न करो, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं। जब सब भक्त लोग प्रसन्न हुए तब नित्यानंद प्रभु ने अपने चरण कमल उनके ऊपर रखे, बोला आशीर्वाद दो। आशीर्वाद हृदय से निकलता है, है ना। कई बार भक्त लोग आते हैं उन्होंने प्रभु जी सर पे हाथ रख दो, इसके जबरदस्ती आशीर्वाद नहीं दिया जा सकता। आशीर्वाद पाने के लिए हम क्या करते हैं, पहले सेवा करते हैं, उनके हृदय को संतुष्ट करते हैं और फिर हृदय से आशीर्वाद निकलता है। और फिर भक्त लोग वैष्णवगण प्रार्थना करते हैं उस व्यक्ति के लिए, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि इनको आप अपने चरणों की शरण दो। नित्यानंद प्रभु ने यही प्रार्थना की, जितने माफी आपको शरण प्राप्त होगी कोई विघ्न नहीं आएगा, है ना। तो आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए रघुनाथ दास जी ने क्या किया, पहले भक्तों की सेवा की और सब भक्तों ने बड़े खुले हृदय से फिर क्या दिया, आशीर्वाद दिया, है ना। भक्तों की कृपा, गुरु की कृपा, फिर मिलेगी भगवान की कृपा, कोई शॉर्टकट नहीं है इसमें, है ना। तो कई बार ये फंस जाते हैं हम, ये क्या बात हो गई, यही है। इसीलिए हम आज प्रार्थना कर सकते हैं रघुनाथ दास गोस्वामी जी से और नित्यानंद प्रभु से कि हमें अंदर भी उत्साह हो कि हम भक्तों की सेवा कर सकें और इसी प्रकार से गुरु को प्रसन्न कर सकें और फिर चैतन्य महाप्रभु के चरणों की शरण प्राप्त कर सकें। हरे कृष्ण। किसी का कोई प्रश्न या टिप्पणी, एनी क्वेश्चंस और कमेंट्स? दबा के रखिए। हाय, हाँ बोल दीजिए, मैं रिपीट कर दूँ।
लेकिन भक्तों को कई बार लगता है कि इससे अच्छा है कि कैश दे देते हैं, रिक्वायरमेंट ना देख के कि भाई कुछ क्या उसकी जरूरत है, तो इसको कैसे, मतलब कैश देना
कोई सामान,
क्योंकि वो अपने उससे भी बच जाता है थोड़ा भाग दौड़ करने से भी, तो इजी वे ढूंढ लेता है वो।
नो इजी वे, अगर वास्तव में सेवा करनी है, लव मीन्स अटेंशन टू डिटेल्स। अगर वास्तव में किसी भक्त से प्रेम करते हैं तो डिटेल्स में जाएंगे, इनको क्या अच्छा लगता है, क्या इनके लिए लाभदायक है, क्या इनकी आवश्यकता है।
और दूसरा, जैसे आपने बताया कि नित्यानंद प्रभु ने कि जब सब भक्तों ने आशीर्वाद दिया उसके बाद चरण कमल जो उनके सर पर, लेकिन शुरू में भी उन्होंने रख दिए थे, हाँ। तो वो कैसे, मतलब उन्होंने कैसे
कृपा,
वो उनकी लॉलियम को देख के,
हाँ लॉलियम को देख के कृपा की, ऐसा नहीं है कि कृपा को होल्ड किया, लेकिन आज्ञा दी कि सबकी सेवा करो, सबकी सेवा की।
ऐसा हम लोग भी कर सकते हैं फिर, घरों में कभी बाई चांस वैष्णव आ जाए तो उनके बर्तन बचे हैं उनमें फिर हम लोग भी ले सकते हैं। चुपचाप भी कर सकते हैं कि नहीं है?
कहा जाता है कि महाप्रसाद चोरी करने का अधिकार सबको है।
अरे बहुत
और और किसी का कोई प्रश्न?
हरे कृष्ण प्रभु जी, जैसे आपने एक लेक्चर में बताया था कि प्रहलाद महाराज कहते हैं जातस्य ध्रुव मृत्यु, कि जो मृत्यु है वो हमारी ऐसी है कि कभी भी हो सकती है, तो हम ज्यादा से ज्यादा परोपकारी कैसे बने? ज्यादा से ज्यादा इतनी मतलब समय हमारा ऐसा है कि बहुत जल्दी निकल रहा है, तो हम ज्यादा से ज्यादा कैसे सेवा करें?
यही है, नित्यानंद प्रभु चैतन्य महाप्रभु की शरण ले लो, अपने जीवन को सुधारो, दूसरों के जीवन को सुधारने में मदद करो, खूब प्रचार में सहायता करो, अच्छे ढंग से जप करो।
तो प्रभु जी, जैसे हम काम करते हैं, वर्किंग है, तो मेट्रो में देखते हैं या बहुत सारे लोगों को देखते हैं जो बहुत बिल्कुल जिनके पास बिल्कुल भी नहीं है, तो हम प्रचार कार्य के माध्यम से बढ़े या उनकी हेल्प करके आगे बढ़े?
उनकी हेल्प करना ही प्रचार है, प्रचार का मतलब है उनकी हेल्प करना और अपनी भी हेल्प करना। तो अपने पास पुस्तकें रखिए, आप पुस्तकें बांटिए, सबसे सशक्त तरीका है प्रचार करने का, दूसरों की मदद करने का। फिर कोई मिलता है उसको मंदिर में इनवाइट कीजिए, अपने पास हमेशा प्रसाद रखिए, प्रसाद बांटिए, ठीक है ना? यस, श्री दाम पद्म।
हरे कृष्ण गुरु जी, अब जैसे हम देखते हैं गृहस्थ जो भी कमाई करता है उसके अंदर कुछ ना कुछ प्राप्त अवश्य मिला होता है। अब जैसे हम किसी को गिफ्ट देते हैं और देते हैं, मान ली किसी वैष्णव को देते हैं, तो क्या उसका प्रभाव उसके ऊपर नहीं पड़ेगा और वो कैसे प्योरीफाई होंगे?
इसलिए गरुण पुराण में बताया गया है कि किसी को भी चैरिटी दान लेने का अधिकार तभी है जब वो उस व्यक्ति का उद्धार कर सके। ये कर्मों की गति बहुत गहन है, तो कोई आपसे कोई गिफ्ट स्वीकार कर रहा है तो उसको आपको आध्यात्मिक ज्ञान देना चाहिए, निस्वार्थ भाव से आपकी भलाई के लिए सोचना चाहिए, आपका भला करना चाहिए, तब आप ये तभी आदान प्रदान है। भक्तों के बीच में आदान प्रदान है, ददाति पति गणाति, फिर ये कर्मों से ऊपर हो जाता है ना। भक्तों के बीच में आदान प्रदान ये कर्मों के अधीन नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे की सेवा के लिए किया जा रहा है।
अगर हम किसी वैष्णव को गिफ्ट देते हैं तो वैष्णव को पाप तो नहीं लगेगा उनको?
आप समझे, मैंने बताया, अगर वैष्णव अपनी सेवा सही ढंग से नहीं कर रहा आपकी तो पाप लगेगा, लेकिन वैष्णव आपकी सेवा कर रहा है, आप भी वैष्णव हैं, आप थोड़ी आप वैष्णव नहीं हैं, आप भी वैष्णव हैं, वो भी वैष्णव हैं, क्योंकि आप इस आश्रम में स्थित हैं तो अपना जो धन अर्जन किया उसका सदुपयोग कर रहे हैं, क्योंकि वो वैराग्य आश्रम है तो आपको ज्ञान दे रहे हैं, आपको मदद कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने का, तो दोनों एक दूसरे की सेवा कर रहे हैं। तो दोनों के बीच में जो आदान प्रदान है ये कर्मों के अधीन नहीं है, लेकिन में से कोई भी अगर अपना कर्तव्य पूरा नहीं कर रहा फिर वो कर्मों के अंडर आएगा।
थैंक यू।
कैसे?
आपके भक्त हैं,
अपने साथ के घर दूसरे
अपने साथ के जो वैष्णव हैं उनको बुला के जैसे फीस दे रहे हैं, गिफ्ट्स दे रहे हैं, तो वो तो दूसरे उसमें उसको कैसे फिर समझ सकते हैं?
कोई बात नहीं, ये भी आदान प्रदान है, ददाति प्रति घृणाति, उनके क्या आवश्यकता है, क्या उनको अच्छा प्रिय लगेगा, मुख्य उद्देश्य है उनको प्रसन्न करना, उनको दीजिए।
जैसे आपने बताया कि गरुड़ पुराण में लिखा है कि अगर कोई आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नत नहीं है तो वो गिफ्ट,
वो चैरिटी नहीं है, वो चैरिटी की बात कर रहा हूँ, दान लेने के लिए, ये तो चैरिटी नहीं है, गिफ्ट का आपस में आदान प्रदान है। ठीक है, तो आप सब भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। दही चुड़वा महामहोत्सव की, खड़कनाथ दास गोस्वामी जी की, नित्यानंद प्रभु की, चैतन्य महाप्रभु के, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, नेताय गौर प्रेमानंदे।
हरे कृष्ण।